हम सच बोल रहे हैं तो दूसरे का हित होगा कि नहीं होगा, दूसरे के हित के लिए मुझे बोलना है। और अगर दूसरे के हित के लिए मुझे झूठ भी बोलना पड़े, अपने अपने बचाव के लिए भी तो कई बार हमें झूठ बोलना पड़ता है, अपने स्वयं से भी नहीं बोलता है व्यक्ति अपने बचाव के लिए। तो जो अपने बचाव के लिए हम झूठ बोल के भी उसे सच मानते हैं, तो दूसरे के बचाव के लिए हम क्या प्रयास करेंगे, ये हमें विचार करना चाहिए। मेरे ख्याल से जिसके प्रति हमारा प्रेम होता है उसके प्रति ही हम वचन संभाल के बोलते हैं। आप देख लो, लिखा है एक जगह, किसी आचार्य ने लिखा है, नाम उनका याद नहीं आ रहा, कि जब तक प्रेम रहता है तब तक हम दूसरे के दोषों को भी उससे ही नहीं कहते, लेकिन जब प्रेम टूट जाता है तो वर्षों पुराने दोषों को भी सबके सामने प्रकट करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। आप अपने अनुभव से देख लीजिएगा, इसका मतलब है कि उस समय मेरा इंटेंशन बदल गया और सारा खेल है उस इंटेंशन का कि आप जो बोलने जा रहे हैं उसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है। एक राजा साहब के यहां पर एक किसी बंदी को लाया गया, उसको सजा थी, उसकी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए उसे राजा के पास लाया गया था कि चल, उसे सिखा पड़ा कि दूसरे लोगों ने कहा था कि चल जाकर के राजा से जरा एक बार माफी तो मांग के देख, शायद माफ कर देंगे वो। पर वो तो बहुत गुस्से में भरा था, तो राजा के सामने जाकर के उसने अपनी भाषा में राजा को ढेर गालियां दी। वो जो बड़ा मंत्री था उसका मन बहुत दया से भरा था उस व्यक्ति के प्रति। तब राजा ने मंत्री से पूछा कि क्या कहा इसने, तो बोलता राजन ये अपनी भाषा में आपसे क्षमा मांग रहा है, आपकी प्रशंसा कर रहा है, ऐसा कह दिया। तो दूसरा मंत्री तो तैयार ही बैठा था, ऐसे लोग तैयार बैठे रहते हैं हाँ। तो उस दूसरे वाले मंत्री ने कहा कि राजन झूठ, दोनों झूठ बोल रहे हैं, ये तो झूठ बोल ही रहा है और ये आपके बड़े मंत्री जिनको आपने बड़े बना के रखा है ये भी झूठ बोल रहे हैं। राजा मुस्कुराया और उसने कहा कि इस दूसरे वाले मंत्री को तो सजा और बड़े मंत्री को पुरस्कार, और इसको कर दो रिहा, मुझे वो झूठ पसंद है जिससे दूसरे की भलाई हो, ये वाला सच पसंद नहीं जिससे कि दूसरे की का घाटा हो रहा हो। मेरे ख्याल से अब उदाहरण से आपके बात समझ में आ गई होगी मैं जो कहना चाह रहा हूं।